पुस्तक सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की घोषणा करना, लेखक रॉबर्ट प्रकाश, अध्याय 8, चंगाई चमत्कार। बीमारी शैतान का हथियार है जो कि आदम के पाप में विद्रोह के कारण इस संसार में आई और इंसान को मौत की ओर ले जाती है। यीशु ने हर एक उस व्यक्ति को जो उसके पास आया चंगाई देकर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। लूका 4:40। किसी भी बीमार और रोगी व्यक्ति को यीशु ने कभी भी वापस नहीं लौटाया, वरन चंगा किया। आज भी यीशु बदला नहीं है और वह हमेशा एक सा है। इब्रानियों 13:8। यीशु ने पूरी तरह से पिता का प्रतिनिधित्व किया और उसके मनुष्य के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता था। यीशु ने पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए कभी भी किसी को बीमार या रोगी नहीं किया। ठीक इसके उलट यीशु ने शैतान के सब सताए हुओं को अच्छा किया। प्रेरितों के काम 10:38। हमारा अच्छा पिता अपनी किसी भी संतान को अनुशासित करने या सबक सिखाने के लिए शैतान, दुष्टात्माओं और बीमारियों का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। इस निर्विवाद सच्चाई के साथ हमें सुसमाचार को हर एक बीमार आत्मा में दुखित और भटके हुए व्यक्ति तक पहुँचाना है। इस संसार के लिए आप मसीह हैं। यीशु ने कहा कि वह जगत की ज्योति है, यूहन्ना 8:12। यीशु ने अपने चेलों को भी जगत की ज्योति कहा है, मत्ती 5:14। मित्रों, यीशु और उसके चेले दोनों ही जगत की ज्योति हैं। पुनर्जीवित हो उठने के बाद यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों के अंदर रहा, वास किया और आज भी वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। कुलुसियों 1:27। इसी रीति से संसार के लिए आप मसीह हैं। आप वह बर्तन हैं जिसमें अनंत जीवन, चंगाई की सामर्थ, पुनरुत्थान की शक्ति, शांति और आनंद पाया जाता है। आप स्वयं स्रोत नहीं हैं, परंतु जीवन और चंगाई का स्रोत आपके अंदर स्थायी रूप से रहता है और वह आपको कभी न छोड़ेगा। यूहन्ना 14:16-17, इब्रानियों 13:5। इसलिए आप मनुष्य की पीड़ा का जवाब समाधान हैं। जो लोग दुख, दर्द, पीड़ा, सताव और बंधनों में हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए आपके पास अधिकार, सबसे ऊंचा नाम, पवित्र आत्मा की मौजूदगी और सामर्थ्य है। आपको लोगों की चंगाई के लिए परमेश्वर से निवेदन नहीं करना है, परंतु चंगाई तो परमेश्वर का ईश्वरीय जीवन है जो आपके अंदर से बहता है। बीमारों की चंगाई के लिए आप मसीह की देह और पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। इसलिए आप मसीह की देह का अभिन्न भाग होने के कारण अपने आप को चंगाई की प्रक्रिया से कभी भी अलग नहीं कर सकते। बीमारों की चंगाई के लिए आप हमेशा उस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहेंगे। आपके शब्द, आपका विश्वास और आपके कार्यों के द्वारा लोग चंगाई प्राप्त करेंगे। अभी तक धर्म ने आपको झूठ बोला और शैतान ने आपके दिमाग में यह सोच लाकर आपसे धोखा किया है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बिना यीशु के हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु आप यीशु से जुड़े हुए हैं इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं। यीशु ने परमेश्वर से हमारा मेल कराया और हमें परमेश्वर के साथ एक कर दिया है। रोमियों 5:10। यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी है कि वे बीमारों को चंगा करें, ना कि यह कि वे बीमारों को चंगा करने का निवेदन परमेश्वर से करें। मत्ती 10:8। आप खुद तो चंगाई का स्रोत नहीं हैं, परंतु आप वह माध्यम जरिया हैं जिसके द्वारा उसकी मौजूदगी, सामर्थ और अनुग्रह बहता है। यदि किसी को चंगाई की ज़रूरत है तो आप अपने को उपलब्ध करें। यीशु आपको धोखा नहीं देगा और न निराश करेगा, परंतु अपनी महिमा के कामों में भागीदार बनने का सौभाग्य प्रदान करेगा। जन के लंगड़े से पतरस ने अपनी ओर देखने के लिए कहा, प्रेरितों 3:4, क्योंकि पतरस जानता था कि वो माध्यम जरिया है जिसमें से परमेश्वर की सामर्थ्य बहती है। उस चंगाई और अद्भुत चमत्कार के बाद भीड़ जमा हो गई और पतरस ने उत्तर दिया, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। प्रेरितों 3:12। पतरस जानता था कि उसके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा बीमारी और समस्या का समाधान है, परंतु पवित्र आत्मा बिना हमारे शब्दों, विश्वास और कार्यों के काम नहीं करेगा। आपकी सेवकाई में प्रभावशाली रूप से चंगाइयाँ उन लोगों के लिए प्रकट होती है जो आपको चंगाई की प्रार्थना करने की अनुमति देते हैं और जो आपकी और आपकी बातों की ओर ध्यान देते हैं। परंतु चमत्कार प्रकट होने के बाद ध्यान रहे कि उस चंगाई चमत्कार का श्रेय हमें नहीं परंतु यीशु ही को मिले। महिमा और आदर हमें नहीं परंतु केवल यीशु को मिले। चंगाई में प्रमुख रुकावट यह होती है कि परमेश्वर जिन्हें चंगाई का माध्यम बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है वे या तो अपनी भूमिका के महत्व को समझते नहीं हैं या फिर अपने आप को उपलब्ध नहीं करते हैं। लोगों की चंगाई का माध्यम बनने के लिए झूठी नम्रता, आपकी ईश्वरीय बुलाहट और परमेश्वर के द्वारा आपको दिए गए अधिकार के पद को नकारती और उसका खंडन करती है। चंगाई के लिए विश्वास। कुछ लोग विश्वास को किसी की चंगाई के लिए की गई निराधार उम्मीद समझते हैं। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति भरोसे से कहता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप चंगे हो जाएंगे। परंतु अमुक व्यक्ति क्यों चंगा हो जाएगा? किस आधार पर उस व्यक्ति के शरीर में चंगाई प्रकट होगी? कुछ सकारात्मक आशा उम्मीद को ही विश्वास समझते हैं। यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं है परंतु केवल सकारात्मक कल्पना, अटकलबाजी या कयास है। सच्चे विश्वास में चलना और कार्य करना चाहते हैं तो इस अंतर को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब इस प्रकार का व्यक्ति प्रार्थना करता है और चंगाई प्रकट नहीं होती तो वह खुद असमंजस में पड़ जाता है और कहता है, मैंने तो विश्वास किया था कि बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, परंतु वे चंगे क्यों नहीं हुए? मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी की चंगाई के लिए की गई निराधार उम्मीद को विश्वास नहीं कहते हैं। विश्वास का अपना आधार होता है कि अमुक बीमार क्यों चंगा हो जाएगा। चंगाई का भरोसा करने का ठोस कारण होता है और विश्वास की बुनियाद के बिना चमत्कार की कोई भी उम्मीद महज एक कोरी कल्पना, अटकलबाजी और कयास है। महज ये कहना परमेश्वर कुछ भी कर सकता है विश्वास नहीं है। चंगाई के लिए जिस विश्वास की जरूरत होती है उस विश्वास की तिहरी ट्राईफोल्ड बुनियाद होती है, अर्थात उस विश्वास की बुनियाद निम्नलिखित तीन बातों पर टिकी होती है, समझ, बोध और भरोसा, आसरा और निर्भरता, और अधिकार युक्त शब्द और कार्य। समझ, बोध और भरोसा, यकीन करना। विश्वास यह जानता और समझता है कि पिता ने हर बीमारी, दर्द और पीड़ा यीशु के शरीर पर लाद दी थी और यीशु ने उन्हें अपनी इच्छा से उठा सह लिया। विश्वास छुटकारे के इस महान कार्य पर भरोसा रखता है। विश्वास यह उम्मीद करता है कि यीशु के किए गए उस महान कार्य के द्वारा लोगों को बीमारी, दर्द, पीड़ा से छुटकारा भौतिक वास्तविक क्षेत्र में प्राप्त एवं प्रकट हो। आसरा और निर्भरता। विश्वास पवित्र आत्मा की मौजूदगी और सक्षियत व्यक्तित्व के साथ घनिष्ठ और नज़दीकी संबंध रखता है, उसकी सामर्थ्य पर निर्भर रहता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई और दिशा निर्देशन में कार्य करता है। अधिकार युक्त शब्द और कार्य। विश्वास भौतिक क्षेत्र में अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल अधिकार युक्त शब्दों के साथ आज्ञा देने के लिए करता है और जो छुटकारा पिता और यीशु ने बीमारी और शैतान से उपलब्ध कराया है उसे लागू करता है अथवा पुष्ट करता है। विश्वास बीमारी के सोच, विचार, शब्द और कार्यों से सामना करता है। जब भी आप चंगाई के लिए विश्वास करते या विश्वास का कदम उठाते हैं तो आप समझ, बोध और भरोसा, यकीन करें, पवित्र आत्मा का आसरा लें और उस पर निर्भरता जताएं और अपने अधिकार का इस्तेमाल शब्दों और कार्यों के द्वारा करें। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बाइबल में नए नियम में बताए गए विश्वास के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। विश्वास की पहल बनाम पवित्र आत्मा की पहल वाली चंगाइयां। चंगाइयों की पहल दो बुनियादी तरीकों से होती है। या तो हम बीमारी के खिलाफ विश्वास का कदम बढ़ाते हैं या फिर पवित्र आत्मा की बाट जोहते और उसकी अगुवाई के अनुसार सेवकाई करते हैं। मैं शुरू से ही इस बात को साफ करना चाहता हूँ कि हमें दोनों ही तरीकों से कार्य सेवकाई करनी चाहिए। यदि हम इस अंतर को समझ लें तो इससे हमें चंगाई की सेवकाई करने में बहुत मदद मिलेगी। यह भी याद रखें कि इन दोनों ही तरीकों में पवित्र आत्मा शामिल है, परंतु अलग अलग तरह से शामिल है। विश्वास की पहल वाली चंगाइयों के लिए परमेश्वर के स्वभाव का प्रकाशन और यीशु के द्वारा हमारी चंगाई के लिए किए गए कार्य का प्रकाशन हम अपने हृदय में रखते हैं। परमेश्वर के स्वभाव की शिक्षा और यीशु के कार्य का प्रकाशन दोनों पवित्र आत्मा ही से हमें मिलते हैं। उस प्रकाशन को प्राप्त करके हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं जो जरूरत हमें सामने दिखाई दे रही है। यदि हम अपने सामने किसी को बीमार देखते हैं तो हम विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें किसी के लिए प्रार्थना करने से पहले किसी भविष्यवाणी या नबुवत के वचन का इंतजार करते रहने की जरूरत नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति दर्द और पीड़ा में है और अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहता है तो आप विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना करें। जब हमने अपने विश्वास के अनुसार उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करी और उसे चंगा हो जाने की आज्ञा दी, उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे विश्वास के द्वारा सामर्थ्य के साथ कार्य करता है और बीमार को चंगा करता है। प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अपनी इच्छा हमारे ऊपर प्रकट कर दी है, इसलिए कदम बढ़ाएं और जो कोई भी प्रार्थना करने का इच्छुक है उसके लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की पहल वाली चंगाइयों में हमें पवित्र आत्मा की ओर से रेमा वचन किसी व्यक्ति विशेष अथवा कुछ व्यक्तियों के लिए प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा के ये वरदान जैसे ज्ञान का वचन, आत्माओं की परख, चंगाई का वरदान आदि है, और ये वरदान किसी विशेष परिस्थिति या हालात के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई एवं दिशा निर्देशन को प्रकट या जाहिर करते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्वयं शुरू नहीं कर सकते, सिर्फ पवित्र आत्मा ही इसकी पहल करता है। पहला कुरिन्थियों 12:11। हालांकि इसके लिए हमें पवित्र आत्मा को सुनने के लिए जागरूक और संवेदनशील बने रहने की जरूरत होती है। जब भी हम पवित्र आत्मा के इन वरदानों वाणी को सुन एवं जान पाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई, दिशा निर्देशन और वरदानों को प्राप्त करने के बाद हम पर जो भी प्रकट हुआ है हम उसे बोलते हैं, उसकी घोषणा करते, उसे स्पर्श आदि करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की पहल पर प्रतिक्रिया करते हैं तो वह अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए नीचे दिए गए चार्ट को देखें। चार्ट के बाईं तरफ चंगाई के लिए विश्वास का कदम, चार्ट के दाहिनी तरफ चंगाई के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। विश्वास, पहला बिंदु, विश्वासी के विश्वास के द्वारा पहल शुरुआत होती है। पवित्र आत्मा, पहला बिंदु, पवित्र आत्मा के दिशा निर्देशन में पहल शुरुआत होती है। विश्वास, दूसरा बिंदु, विश्वासी के सक्रिय मुस्तैद विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता है और चंगाई की सामर्थ्य प्रकट होती है। पवित्र आत्मा, दूसरा बिंदु, चंगाई की सामर्थ्य आत्मिक वरदानों के द्वारा प्रकट होती है और विश्वासी के विश्वास के क्षेत्र के परे कार्य करती है। विश्वास, तीसरा बिंदु, किसी भी जगह किसी भी समय इसे लागू किया जा सकता है। पवित्र आत्मा, तीसरा बिंदु, पवित्र आत्मा के द्वारा चुने गए किसी विशेष क्षण समय पर यह लागू होता है और कार्य करता है। विश्वास, चौथा बिंदु, जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने के इच्छुक और तैयार होते हैं यह तब होता है। पवित्र आत्मा, चौथा बिंदु, जब पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है यह तब होता है। विश्वास, पांचवा बिंदु, पवित्र आत्मा हमारे अधिकार युक्त शब्दों और विश्वास के कार्यों के द्वारा कार्य करता है। हमारे विश्वास पर पवित्र आत्मा प्रतिक्रिया दिखाता है। पवित्र आत्मा, पांचवा बिंदु, पवित्र आत्मा अपने वरदानों के अनुसार मुताबिक कार्य करता है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। विश्वास, छठवां बिंदु, हमारे प्रकाशन तक ही यह सीमित होता है। पवित्र आत्मा, छठवां बिंदु, हमारे व्यक्तिगत विश्वास की सीमा से बढ़कर काम करता है। विश्वास, सातवां बिंदु, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को जानता है। पवित्र आत्मा, सातवां बिंदु, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को जान पाते हैं। विश्वास, आठवां बिंदु, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। पवित्र आत्मा, आठवां बिंदु, पवित्र आत्मा हम पर कार्य करता है, हम पर वह नियंत्रण करके हम पर अपनी बातें प्रकट करता है। विश्वास, नौवां बिंदु, प्रकाशन प्राप्त, ग्रहण करने और विश्वास से कार्य करने पर सफलता मिलती है। पवित्र आत्मा, नौवां बिंदु, पवित्र आत्मा की घनिष्ठता, नज़दीकी में बने रहने और उसकी अगुवाई, दिशा निर्देशन के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने पर सफलता मिलती है। विश्वास, दसवां बिंदु, उदाहरण के लिए मरकुस 5:24-34 पढ़ें। इस कहानी में उस रोगी स्त्री ने अपने विश्वास से यीशु को ढूंढकर उसे छुआ और चंगाई प्राप्त की। यीशु उसे जानता भी नहीं था। यीशु ने उस स्त्री से कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। पवित्र आत्मा, दसवां बिंदु, उदाहरण के लिए यूहन्ना 5:1-15 पढ़ें। इस कहानी में उस 38 साल से लंगड़े व्यक्ति को यीशु के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। यीशु पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार उसे ढूंढकर चंगा किया, जबकि उस व्यक्ति को यीशु पर विश्वास भी नहीं था। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप निरंतर मनन करते रहें और पवित्र आत्मा से प्रकाशन और अंतर्दृष्टि मांगें और जाने की चंगाई के बारे में संबंध में यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनर्जीवित हो उठना आपको क्या प्रकाशन और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा से उस जीवित ज्ञान का खजाना हासिल करें और उसके अनुसार साहस से कार्य करें। पवित्र आत्मा से घनिष्ठता, नज़दीकी की भूख रखें और उसके साथ समय बिताएं, ताकि आप उसकी मौजूदगी के प्रति संवेदनशील बने और आपको उसकी मौजूदगी का एहसास हो, ताकि आप उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई पर प्रतिक्रिया देने को तैयार रहें और उसकी आवाज़ को सुनकर जो वह चाहता है वैसा ही करें। अत्यधिक आत्मिक बनने का दिखावा ना करें और केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप अत्यधिक आत्मिक बनने का दिखावा करेंगे तो बीमारों की चंगाई के बहुत से अवसरों को आप गवा खो देंगे। वरदानों में कार्य करना। पवित्र आत्मा कई तरीकों से चंगाई की पहल शुरुआत करता है। उनमें से एक प्रमुख तरीका है पवित्र आत्मा के वरदान। ये वरदान देने का निर्णय पवित्र आत्मा का अपना निर्णय है कि किसको और कब दें, परंतु इस वरदानों को प्राप्त करना हमारी जागरूकता और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। यह पूरी सूची, लिस्ट तो नहीं है, परंतु मेरी वर्षों की सेवकाई के अनुभव को लेकर मैंने निम्नलिखित पवित्र आत्मा के वरदानों की सूची बनाई है, जो कि लोगों की चंगाई में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ज्ञान का वचन। बीमारी, दुर्बलता या रोग के बारे में विशिष्ट जानकारी, या फिर जिस व्यक्ति को चंगाई की आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी। अक्सर यह जानकारी टुकड़ों में आपको मिलती है। मतलब यह है कि आपको उस बीमार व्यक्ति या बीमारी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती, परंतु संपूर्ण जानकारी आपको नहीं होती है। जब आप विश्वास का कदम बढ़ाते हुए उस व्यक्ति को बुलाते, पुकारते, बताते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो अक्सर रोगी को तुरंत चंगाई अथवा छुटकारा मिल जाता है। आत्माओं की परख। यह आत्मिक क्षमता, योग्यता किसी विशेष हालात में पहचानने के मकसद, उद्देश्य के लिए होती है, जिससे कि हम परमेश्वर या आत्मिक क्षेत्र में पाई जाने वाली दुष्ट आत्मा और अंधकार की शक्तियों के प्रति अपने प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर दे सकें। चंगाई के संबंध में आप किसी व्यक्ति या समूह पर चंगाई प्रदान करने के लिए उपस्थित पवित्र आत्मा की मौजूदगी और सामर्थ को पहचान सकते हैं, या फिर आप रोगी करने और सताने वाली विशेष दुष्ट आत्मा को पहचान पाते हैं। पहचानने के बाद आप विश्वास का कदम बढ़ाते हुए घोषणा करते हैं, और जब आप आत्मिक क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं तो बीमार को चंगाई मिलती है। भविष्यवाणी नबुवत। हालांकि इसके द्वारा सीधे तौर पर तो बीमार को चंगाई नहीं मिलती, परंतु नबुवत प्रोफेटिक वर्ड अर्थात परमेश्वर के हृदय से आया हुआ यह वचन बीमार के लिए प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना करने के दौरान, बीच में या प्रार्थना करने के बाद प्राप्त हो सकता है और उस बीमार को मजबूत दृढ़ बनाता है, उत्साहित करता और तसल्ली देता है, जिससे कि रोगी अपनी चंगाई प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके। नबुवत का वचन चंगाई में आने वाली रुकावटों को इस प्रकार से दूर करता है और रोगी को चंगाई मिलती है। चंगाई के वरदान। यही एक वरदान है जिसका वर्णन यूनानी भाषा में बहुवचन प्लोरल में किया गया है, चंगाइयों के वरदान। कभी पवित्र आत्मा किसी विशेष बीमारी की चंगाई के लिए अपना अनुग्रह उंडेलता है। जब आप किसी सभा में एक ही बीमारी से बहुत से रोगियों को चंगाई पाते हुए देखते हैं, तो यह इस बात का सबूत है कि चंगाइयों के वरदान सभा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उस बीमारी से पीड़ित सभी लोगों को, या फिर उस बीमारी से मिलती जुलती बीमारी से पीड़ित सभी लोगों को आगे बुलाएं, क्योंकि चंगाई का अनुग्रह वहाँ पर मौजूद है और काम कर रहा है। ऐसा करने पर वहाँ पर अधिक से अधिक लोग चंगाई प्राप्त करने पाएंगे। विश्वास का वरदान। विशिष्ट चंगाई के लिए अथवा चमत्कार के लिए ऐसे विश्वास का प्रदान किया जाना हस्तांतरण जिसमें कि जरा भी शक, संदेह या अविश्वास नहीं पाया जाता। जब यह वरदान आपको मिलता है या उसके ऊपर आता है, तब बड़ा हियाव, साहस और भरोसा आपके हृदय में आते हैं। ऐसे में आपको तुरंत प्रार्थना करने के लिए बढ़ना चाहिए और चंगाई और चमत्कार के प्रकट होने के लिए विश्वास से घोषणा करनी चाहिए। यदि आप पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सीखने के इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान किस तरह से कार्य करते हैं, तो मेरी लिखी पुस्तक पिता की प्रतिज्ञा को अवश्य पढ़ें। दुष्ट आत्माओं का सामना। जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में देखा कि बहुत सी बीमारियां, रोग और दुर्बलता शैतान और दुष्ट आत्माओं के कारण मनुष्य पर आती है। अय्यूब 2:7, लूका 13:11, लूका 4:40-41। अंधकार के क्षेत्र से ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं और इस संसार में आती हैं। कई सालों तक हजारों लोगों के बीच सेवकाई करने के बाद मैंने अनुभव किया और यह जाना कि 50-70% बीमारियां दुष्ट आत्माओं के कारण लोगों पर आती है। कुछ अन्य सेवकों का, जिन्होंने मुझसे भी अधिक वर्षों तक सेवकाई की है, यह मानना है कि 50-90% बीमारियां सीधे तौर पर शैतान और दुष्ट आत्माएं लाती हैं। खैर, आंकड़ों को छोड़ें, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बीमारों की चंगाई के लिए दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ेगा और दुष्ट आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा देनी पड़ेगी, तब लोग चंगे हो जाएंगे। कई वर्षों के अनुभव के बाद मैंने अनुभव किया और पहचान पाया कि रोग, स्वप्रतिरक्षित रोग, ऑटो इम्यून डिजीज और सिंड्रोम आदि दुष्ट आत्माओं के कारण बहुत से लोगों को होते हैं। कई प्रकार की एलर्जी भी दुष्ट आत्माओं के कारण होती है। जब आपको पता चल जाता है कि बीमारी या समस्या का कारण दुष्ट आत्मा है, तब अपने विश्वास पर ध्यान केंद्रित करने में आपको आसानी होती है। प्रार्थना के दौरान रोगी को अचानक दर्द होना, दर्द का जगह बदलना और शरीर में हो रहे कुछ ऐसे लक्षण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बीमारी दुष्ट आत्मा के कारण है। ऐसे मामलों में अपने विश्वास पर ध्यान केंद्रित करें, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दें और प्रार्थना में बने रहें। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनकी बीमारी दुष्ट आत्माओं की वजह से थी और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। इनमें से 20-40% में ऐसी भी संभावना हो सकता है कि दुष्ट आत्मा चंगाई के बाद फिर से बीमारी को लाती है। रोगी को बीमारी के लक्षणों को अस्वीकार, खारिज करना, उनका सामना करना और अपने मुंह के वचनों के द्वारा उसका सामना करना, रोग की आत्मा को बांधना और उसे यीशु के नाम में निकल जाने की आज्ञा देना भी सिखाएं, तो वह बीमारी से आज़ाद बना रहेगा। यदि वह व्यक्ति फिर भी इस क्षेत्र में मजबूत ना होने के कारण संघर्ष कर रहा है, तो किसी अन्य विश्वासी के साथ मिलकर उसकी बीमारी के लिए सहमति जताना या फिर इस व्यक्ति के लिए फिर से प्रार्थना करना भी मददगार साबित हो सकता है। एक शाम केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में पास्टर्स और लीडर्स की कॉन्फ्रेंस में शिक्षा देने के बाद मेरा ध्यान एक ऐसी महिला की ओर गया जो कि कई साल से एक रहस्यमय और कमजोरी लाने वाले दर्द से पीड़ित थी। वह कलीसियारोपण चर्च प्लांटिंग करने वाले व्यक्ति की पत्नी है और दोनों मध्य अफ्रीका में सेवकाई करते हैं। कुछ सवाल पूछने के बाद और लक्षणों को देखकर मैं जान पाया कि वह फाइब्रोमायलाजा रोग से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका सही पता नहीं लग पाता है और लोग इसे कोई और बीमारी समझ लेते हैं। पहले भी इस बीमारी और इन लक्षणों वाले रोगियों के लिए मैं प्रार्थना कर चुका था और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया था, और मैंने देखा था कि उन सभी मामलों में समस्या की जड़ अर्थात बीमारी का कारण दुष्टात्मा ही थी। उस क्षण उस महिला को छाती और पीठ में दर्द हो रहा था। मैंने पवित्र आत्मा को आमंत्रित किया और अपना ध्यान उस न दिखाई देने वाले शत्रु की ओर लगाया और आज्ञा दी, सताने और पीड़ित करने वाले शैतान, मैं तुझे बांधता और निकालता हूँ इसी समय, इस महिला को छोड़ दे। मैंने उस महिला से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही है। उसने तुरंत बताया कि दर्द ने अपनी जगह बदल ली है, अब दर्द उसकी जांग में है। मैंने आज्ञा दी, शक्तिहीन कमज़ोर शैतान, यीशु तुझे कुचल और हरा चुका है, तू अब मुकाबला सामना नहीं कर सकता, निकल जा इसी समय। उस महिला ने फिर जवाब दिया, उसने फिर अपनी जगह बदल ली है, अब वह मेरी पैर की पिंडलियों में है। मैं निरंतर तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक दर्द उसके पंजों और पैर की उंगलियों तक नहीं पहुंच गया। तू इस महिला के अंदर नहीं रह सकता शैतान, यीशु के नाम में मैं तुझे कुचलता और निकालता हूँ, अभी निकल जा। वह महिला उठ खड़ी हुई, करीबन 15 कदम तक चली, वापस आने में वह चिल्लाई और ज़मीन पर गिर पड़ी। वह ज़मीन पर लौटने और चीखने चिल्लाने लगी। वहाँ मौजूद लोग बड़े उत्सुक थे और चाहते थे कि मैं फिर से उस दुष्ट आत्मा के खिलाफ प्रार्थना करूँ, परंतु मैं रुका रहा और उस प्रगटीकरण को जानने समझने और उसका आकलन करने की कोशिश में रहा। उसके बाद वह महिला रोने लगी और यीशु का धन्यवाद करने लगी। जब वह शांत हुई और इस अवस्था में आई कि मुझसे बात कर सकी, तब मैं समझा कि वह चीखना चिल्लाना उस अत्यंत खुशी के कारण था जो कि वह पिछले 10 साल में पहली बार दर्द से पूरी तरह से आज़ाद होने के बाद महसूस कर रही थी। वह उठ खड़ी हुई, झुकी और इधर उधर की ओर मुड़ी, चली फिरी, उछली कूदी और वह दर्द से पूरी तरह से आज़ाद थी। उस पूरे हफ्ते कॉन्फ्रेंस में वो आई, मैंने उसे देखा कि वह पूरी तरह से दर्द से मुक्त और स्वस्थ बनी रही। वहाँ के मुख्य अगुओं ने, जिसके नीचे वे काम करते थे, मुझसे कहा, हम पिछले 10 साल से लगातार इस महिला के लिए प्रार्थना करते रहे परंतु इसे चंगाई नहीं मिली, आज इसे चंगी देखकर मैं हैरान हूँ। मैंने उन महोदय से पूछा, क्या आपने कभी प्रार्थना के दौरान उस सताने और पीड़ित करने वाली आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दी? उत्तर ना में था। दोस्तों, जब बीमारी की जड़ में दुष्ट आत्मा होती है तो बहुत सी बार उस आत्मा को अधिकार के साथ संबोधित करना पड़ता है, डांटना और आज्ञा देनी पड़ती है, तब रोगी को स्थायी चंगाई मिलती है। अपनी आत्मा में से प्रार्थना करना। जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और यह मैंने वर्षों के अभ्यास के बाद सीखा है। आप अपने मन, भावनाओं या आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। मन, यह हमारे दिमाग और प्राण का मेल, संयोजक या जोड़ मिश्रण है। हमारा मन ज्ञान संबंधी बातों को समझने और उसकी वजह जानने की योग्यता प्रदान करता है। यहीं पर दिमागी ज्ञान इकट्ठा जमा होता और इस्तेमाल होता है। प्रार्थना के संबंध में मन की सहायता से हम बोलने के लिए शब्दों को सूत्रबद्ध या तैयार करते हैं। शब्दों का जो भंडार ज्ञान संबंधी बातों का हमारे मन में जमा होता है, उसमें से शब्दों को लेकर हम बोलने की तैयारी करते हैं। बहुत से विश्वासी सिर्फ ज्ञान या दिमागी जानकारी के लिए चंगाई के इस विषय को पढ़ेंगे ताकि वे ज्ञान संबंधी शब्द तैयार और सूत्रबद्ध कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना करने हेतु इस तरह अपने मन में जमा ज्ञान का इस्तेमाल करके प्रार्थना करने हेतु इस तरह से अपने मन में जमा ज्ञान का इस्तेमाल करके प्रार्थना करते हैं और जल्दी ही परिणाम न देखने पर निराश हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते हैं, सारे संसार का विश्वास मेरे पास है। उनका मतलब यह होता है कि बौद्धिक रूप से चंगाई की उम्मीद लगाने के लिए सारा ज्ञान उनके पास है, लेकिन यह विश्वास कदाचि नहीं है। वचन का दिमागी ज्ञान प्रकाशन से बिल्कुल भिन्न और अलग है। ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में रहता है, जबकि प्रकाशन वह आत्मिक ज्ञान है जो कि हमारी आत्मा में पाया जाता है। आप ईश्वरीय चंगाई के बारे में कुछ घंटों में सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, परंतु प्रकाशन आत्मा ही से प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा पर निर्भर हुए बिना भी आप ज्ञान हासिल अर्जित कर सकते हैं, परंतु प्रकाशन सिर्फ परमेश्वर ही देता है। विश्वास करने और प्रार्थना करने में आपका मन भूमिका निभाता है, परंतु उसे आत्मा की अधीनता में होना आवश्यक जरूरी है। भावनाएं, यह शरीर और प्राण का मेल संयोजक या जोड़ मिश्रण है। भावनाओं को हम महसूस करते और अभिव्यक्त करते अथवा कहते हैं। बीमारी के प्रति रहम, दया और हमदर्दी बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना करने में बड़े प्रेरक बन सकते हैं। रहम, दया और हमदर्दी के कारण हमारे अंदर अपने अजीज या रोगी को चंगाई पाते हुए देखने की तीव्र इच्छा जागेगी। इंसानी हमदर्दी या दया और परमेश्वर के ईश्वरीय तरस में जमीन आसमान का अंतर है। हमदर्दी और दया वो इंसानी भावनाएं हैं जो कि आपको अपनी आत्मा से विश्वास करने से रोक सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए अपने परिवार या अजीज की चंगाई के लिए विश्वास कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारी गहरी इच्छाएं वास्तविक विश्वास के रास्ते में आ जाती है और रुकावट बनती है। जब हम भावनाओं में प्रार्थना करते हैं तो यह निष्फल बेकार साबित होता है, क्योंकि इच्छा विश्वास नहीं है। विश्वास आत्मा का फल और आत्मिक गुण है, जबकि इच्छा चाहे कितनी भी नेक क्यों ना हो आत्मा का फल नहीं है। संसार की सारी इच्छाएं एक साथ मिलकर भी चाहे तो एक चमत्कार को उत्पन्न प्रकट नहीं कर सकती है। यदि ऐसा होता तो संसार भर के अस्पतालों में चमत्कार प्रकट हो रहे होते। बीमारों को चंगाई देने के लिए यीशु तरस से भर गए, मरकुस 1:41। और यह ईश्वरीय तरस आत्मा का कार्य है, न कि प्राण का कार्य। जब मैंने बीमारों के लिए प्रार्थना करने के दौरान अपनी इंसानी भावनाओं और जज्बातों को दूर रखना सीखा है, तब मैंने सेवकाई में कामयाबी को देखा है। मैं जब अपने किसी अजीज के लिए प्रार्थना चंगाई के लिए करता हूँ तो ऐसे जैसे कि उस व्यक्ति से मैं पहले कभी नहीं मिला और वह मेरे लिए एक अनजान शख्स हो। प्रार्थना या सेवकाई के दौरान एक क्षण को भूल जाएं कि वह बीमार व्यक्ति आपका कितना प्रिय है और कितने दुख और पीड़ा में है, और अपनी आत्मा से अपने काम में लग जाएं और उस कार्य को करें। आत्मा, इसको हम अंदरूनी मनुष्य भी कहते हैं, यह आत्मिक क्षेत्र में शरीर का समकक्ष प्रतिरूप है, क्योंकि हम बात करते हैं आत्मिक आँखों की, आत्मिक कानों की और आत्मिक संसार को छूने की। पवित्र आत्मा आपके शरीर में जो आपकी आत्मा है उसमें रहता वास करता है। सच्चा विश्वासी मानसिक और भावनात्मक नहीं, परंतु हमारी आत्मा और हृदय का कार्य है। हमारी आत्माओं को विश्वास करने के लिए प्रकाशन की जरूरत होती है। प्रकाशन उस भूखे हृदय पर प्रकट होता अथवा मिलता है जो कि परमेश्वर के वचन के जीवित ज्ञान की खोज में लगा होता है। प्रकाशन हमें तब मिलता है जब हम वचन पर मनन करते रहते हैं, वचन का अंगीकार करते रहते हैं और वचन में बने रहते हैं। प्रकाशन वह वरदान है जो कि पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। जैसे जैसे यह प्रकाशन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे विश्वास के परिणाम नाप अथवा सीमा में भी बढ़ोतरी होती है। हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम करती है, पवित्र आत्मा से अलग होकर कभी नहीं काम करती। पवित्र आत्मा में से होकर ईश्वरीय जीवन हमारी आत्मा के द्वारा बहने लगता है और लोगों को चंगाई प्रदान करता है। हमारी आत्मा में जीवन बहना शुरू होना चाहिए, फिर हमारी आत्मा में से हमारे प्राण में बहना चाहिए और हमारे शरीर से लोगों को चंगाई देने के लिए रिहा होना अर्थात बहना चाहिए। आत्मा, प्राण, दिमाग, शरीर, सबसे पहले विश्वास को हमारी आत्मा में ग्रहण किया जाता है, फिर वह हमारी आत्मा में से होकर प्राण, मन, भावनाओं और इच्छा के द्वारा गुजरता है। यदि हम अपने विश्वास में रुकावट नहीं चाहते वरन विश्वास में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें अपने मन और भावनाओं को अपनी आत्मा की अधीनता में लाना होगा। इसी कारण वचन में लिखा है कि मन में संदेह ना करें वरन प्रतीति करें, मरकुस 11:23। अपने प्राण या मन में संदेह करके विश्वास के बहाव को ना रोकें। जब मैं अपनी आत्मा से विश्वास करता हूँ तो मैं जिस बात के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ उस बात की कल्पना करके या उसके बारे में बार बार सोचकर मैं अपने मन को विश्वास के अधीन कर देता हूँ। चंगाई के चमत्कार की तस्वीर मैं अपने मन में देखता हूँ, फिर विश्वास मेरे दिमाग में से गुजरता है और मैं तमाम तार्किक विचारों को जो विश्वास में रुकावट बन सकते हैं छोड़ देता हूँ और शब्दों को तैयार और सूत्रबद्ध करता हूँ जिससे कि मैं अपने विश्वास को अभिव्यक्त कर सकूँ। अंत में मेरे शरीर के द्वारा विश्वास के शब्दों की घोषणा करते हुए बोलते हुए मेरा विश्वास निकलता है, या फिर मेरा विश्वास बीमारों पर हाथ रखने के द्वारा या अभिषेक के तेल के द्वारा अभिव्यक्त प्रकट होता है। यदि विश्वास आत्मा में से उत्पन्न नहीं होता या फिर विश्वास का प्रवाह प्राण, दिमाग या शरीर के द्वारा रोक दिया जाता है तो चंगाई प्रकट नहीं होगी। निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करने के द्वारा आप अपनी आत्मा से प्रभावशाली रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। पहला बिंदु, अपने मन को इस तरह ढाल बना लें कि आपका केवल 5% ध्यान बीमारी की ओर हो और बाकी 95% ध्यान पवित्र आत्मा की ओर लगा हो। क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ रहता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि पवित्र आत्मा पर ध्यान केंद्रित फोकस करने के लिए आप अपनी आत्मा से कार्य करें। दूसरा बिंदु, तुरंत बीमार के लिए प्रार्थना ना करें, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें, उसकी नज़दीकी में जाएं और बने रहें, उससे प्रेम और स्नेह के शब्द बोलें। तीसरा बिंदु, मन और बुद्धि को वश में रखने का अद्भुत तरीका है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। ऐसा करके आप अपने को आत्मा की स्थिति में ला खड़ा कर रखते हैं। चौथा बिंदु, पवित्र आत्मा और आप अपनी आत्मिक दशा के प्रति जागरूक और सचेत होने के बाद बोलना शुरू करें, घोषणा करें और विश्वास में आज्ञा दें। बीमारों पर विश्वास के साथ हाथ रखकर अपने शरीर के द्वारा चंगाई के जीवन को संचारित करें। अपने मन में विचार एवं कल्पना करें कि चंगाई प्रकट हो रही है। जटिल प्रार्थना या जटिल शब्दों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जटिल प्रार्थना या जटिल शब्द आपके ध्यान को आत्मा पर से भटकाकर मन पर ले आएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप आत्मा से प्रार्थना करने के इस नमूने, मॉडल या तरीके का बार बार अभ्यास करें जब तक यह आपके अवचेतन में न समा जाए। आपको बुनियादी प्रार्थनाएं या कंठस्थ होनी चाहिए ताकि आपको अपने दिमाग मन के द्वारा प्रार्थनाओं को सूत्रबद्ध तैयार ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा होने पर आपका ध्यान बटेगा। पवित्र आत्मा पर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वही आपका सिखाने वाला, मार्गदर्शक और सहायक है और वही आपको कामयाबी की ओर ले चलेगा और आपको कामयाबी देगा। प्रार्थना नमूना, 10 साल से भी ज़्यादा समय की सेवकाई में मैंने हजारों चंगाइयां और चमत्कार होते देखे हैं, पर इस वर्षों में प्रार्थना का नमूना नहीं बदला। मैं व्यक्तिगत रूप से इन नमूनों का इस्तेमाल करता हूँ और इस नमूने को लोगों को भी सिखाता हूँ, और इस तरीके का प्रभाव असर मेरे अपने अनुभव तक ही सीमित नहीं है। पहला बिंदु, बीमार व्यक्ति से उसकी शारीरिक समस्या के बारे में सिर्फ बुनियादी बातें ही पूछें। 10 से 20 सेकंड की बुनियादी जानकारी उसकी समस्या के बारे में जानें। ज़्यादा विस्तार में ना जाएं, क्योंकि इससे आपके विश्वास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उस व्यक्ति को उसके दर्द और दुख का इतिहास बताने से रोकें या मना करें, क्योंकि इससे उम्मीद, आशा और विश्वास का माहौल दूषित हो सकता है। याद रखें, अपने आप को बेचारा समझने वाले लोग जो आत्मदया, सेल्फ पिटी की आत्मा से जकड़े हुए हैं, वे अपनी समस्या पर ध्यान केंद्रित करना और करवाना चाहते हैं। वे आपका ध्यान समस्याओं, निदान, चिकित्सा रिपोर्ट की ओर ले जाना चाहते हैं। बड़े प्यार से उन्हें चुप करा दें। दूसरा बिंदु, विश्वास में प्रार्थना करने से पहले पवित्र आत्मा को बुलाएं, आमंत्रित करें और उसे पहला स्थान दें। अपने ध्यान को आत्मिक क्षेत्र की ओर केंद्रित करें, ताकि आप अपनी आत्मा से विश्वास कर सकें। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें और उसे पहला स्थान दें। इस प्रकार से बोलकर प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला नहीं हूँ, आप यीशु को दर्शाने, प्रकट करने के लिए विश्वास योग्यता से मेरे प्रति वचनबद्ध हैं। मैं अपने जीवन में सेवकाई के इस समय में पहला स्थान आपको देता हूँ। मैं आपसे और आपकी मौजूदगी से प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की महिमा के लिए मुझ में से बहें। तीसरा बिंदु, पवित्र आत्मा की वास्तविक मौजूदगी जो आपके ऊपर है, उस पर ध्यान दे और उसके प्रति संवेदनशील बने। एक क्षण का समय पवित्र आत्मा को महसूस करने में और उसकी मौजूदगी को ग्रहण करने में बिताएं। अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करें और लगाएं। आपका मकसद पवित्र आत्मा की मौजूदगी से भर जाना है। जो शब्द आप बोलते हैं, उनका इतना अधिक महत्व नहीं है जितना कि पवित्र आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना और पवित्र आत्मा से विचार विमर्श करना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। घनिष्ठता या नज़दीकी के शब्द बोलने से नज़दीकी का अनुभव होता है। धीरे से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा, इसी समय वास्तविक रूप से मेरे ऊपर आ जाइए। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से आप ही के ऊपर निर्भर हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ मिलकर आपकी अगुवाई और दिशा निर्देशन में सेवकाई करूँ। आप ही मेरा सबसे कीमती खजाना है। मुझे अपनी मौजूदगी का सुख और आनंद दें। अनुग्रह प्रदान करें कि मैं आपको महसूस कर सकूं और आपकी सामर्थ्य और मौजूदगी को महसूस कर सकूं। मैं आपसे प्रेम करता हूं। आप बहुत खूबसूरत हैं। इस बिंदु पर पहुंचकर आप अपनी आत्मा, प्राण और शरीर में उसका एहसास कर सकेंगे, अर्थात उसे महसूस कर सकेंगे। उसके साथ आपका जुड़ाव और उसकी उपस्थिति का एहसास होना सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। चौथा बिंदु, समस्या के स्थान पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा की मौजूदगी को महसूस करें। अपने आत्मिक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा की मौजूदगी और सामर्थ्य की चेतना और जागरूकता के साथ समस्या के स्थान पर विश्वास के साथ हाथ रखें और चंगाई की सामर्थ्य के बहने की उम्मीद लगाएं। प्रार्थना का सुझाव, पवित्र आत्मा, इसी समय इस बीमारी, समस्या के स्थान, घुटना, पीठ, गुर्दे आदि में अपनी चंगाई की मौजूदगी और सामर्थ्य के साथ आ जाएं। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को रिहा करता हूं। चंगाई का जीवन बहने पाए और प्रकट हो, इसी समय यीशु के नाम में। पांचवा बिंदु, अधिकार युक्त शब्दों को बोलकर बीमारी और दुष्टात्मा को चले जाने की आज्ञा दें, तब चंगाई प्रकट होगी। पीड़ा के स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीमारी, दर्द या दुष्ट आत्मा को दृढ़ता से चले जाने को कहें। परमेश्वर से चंगाई देने के लिए निवेदन ना करें। शरीर को, उत्तकों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को, तंत्रिकाओं और रीढ़ की हड्डियां आदि को चंगाई हासिल करने, स्वस्थ होने और अपनी सही अवस्था और स्थान पर वापस आ जाने को कहें। प्रार्थना सुझाव, इस बीमारी को मैं यीशु के नाम से श्राप देता हूँ और उसे खत्म हो जाने की आज्ञा देता हूँ। बीमारी, मैं तुझे यीशु के नाम में जड़ से उखाड़ता हूँ और इस शरीर को छोड़ देने की आज्ञा देता हूँ। दुर्बलता की आत्मा, मैं तुझे बांधता हूँ और आगे को इस शरीर को यातना और दुख देने से मना करता हूँ। दुष्ट आत्मा, मैं तेरे कार्य को इस शरीर में से खत्म करता हूँ और अभी निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। अभी निकल जा। रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड का अस्थिखंड यीशु के नाम से सिधाई और सही अवस्था में आ जाए। मांसपेशियां आराम पाएं, घुटना फिर से काम करने लगे और उसमें जान आ जाए। बहरे कान चंगाई पाएं और सुनने की शक्ति फिर से वापस लौट आए। छठवां बिंदु, उस व्यक्ति से पूछें कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उस व्यक्ति को चलाएं फिराएं और जांचें परखें। साधारण और सुरक्षित कार्य करवाते हुए जांचें और पता करें कि दर्द चला गया या कम हुआ है, या फिर बीमारी के लक्षणों से चंगाई मिली या नहीं। यदि बीमारी की अवस्था में जरा सा भी सुधार हुआ है तो आशावान बनकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उस व्यक्ति से भी ऐसा ही कराएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना जारी रखें। यदि दर्द या लक्षण बढ़ जाते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते और अपना स्थान बदल लेते हैं तो कड़ाई के साथ दुष्ट आत्मा का सामना और मुकाबला करें। ध्यान दें, यदि आप अपने हृदय में पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि रोगी को चंगाई मिल गई है या फिर चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो फिर उस व्यक्ति से अपने शरीर को जांच परखने के लिए ना कहें, क्योंकि जो दृढ़ विश्वास आपकी आत्मा में है या उसके विपरीत भी हो सकता है। कभी कभी दोबारा से जांचना परखना और प्रार्थना करना आपके विश्वास को भंग भी कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में रोगी से दोबारा पूछने या अवस्था की जांच करने को कहकर अपने आप को बेवजह दबाव में ना डालें। सातवां बिंदु, निरंतर प्रार्थना और गवाही के साथ उसकी सहायता और फॉलो अप करें। यदि बीमार व्यक्ति पूरी तरह से चंगा हो गया है तो उसे उभारें और प्रोत्साहित करें कि वह तुरंत गवाही दे। यदि उसे पूरी चंगाई नहीं मिली है तो 3 से 5 कदम को जब तक आपको सफलता मिल रही है तब तक दोहराते रहें और दोहराना जारी रखें, जब तक आप विश्वास की गति को और पवित्र आत्मा की अगुवाई को महसूस कर रहे हैं। यदि कई बार कोशिश करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप उसे जारी रखना बंद कर दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में विश्वास की गति और वेग खो देने पर आप स्वयं अपनी शक्ति से काम कर रहे होंगे, या ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा आपको रुक जाने का संकेत दे रहा है। यदि कोई बदलाव ना दिखाई देने पर आप प्रार्थना रोक देते हैं तो भी सकारात्मक और आशावान बने रहें। याद रखें, बहुत से चमत्कार और चंगाइयाँ घंटों, दिनों और हफ्तों के बाद भी प्रकट होते हैं। यदि 2 हफ्तों तक रोगी की अवस्था में कोई सुधार नहीं आता है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि फिर से प्रार्थना करें। ऊपर दिया गया नमूना किसी बीमार के लिए सेवकाई प्रार्थना का प्रभावशाली तरीका है। यदि आपको खुद व्यक्तिगत चंगाई की आवश्यकता है और आप यह जानना चाहते हैं कि स्वयं अपने लिए कैसे प्रार्थना करें, तो मेरी पुस्तक, जिसका शीर्षक है अनुग्रह परमेश्वर के हृदय का प्रगटीकरण, पढ़ें। उस पुस्तक में मैंने अपनी खुद की व्यक्तिगत गवाही लिखी एवं बताई है कि किस प्रकार से मेरे अपने विश्वास के द्वारा मुझे फेफड़ों की लाइलाज बीमारी से चंगाई मिली। यह पुस्तक आपको व्यवहारिक कदम और दिशा निर्देशन देती है कि किस प्रकार से चमत्कार और चंगाई प्राप्त करने के लिए विश्वास किया जाए। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिए व्यवहारिक प्रश्न। पहला प्रश्न, क्या आपको पूरा यकीन है कि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह चंगा एवं स्वस्थ हो? यदि हाँ, तो कौन सा जबरदस्त कारण है इसका? यदि नहीं, तो कौन सी वह चीज़ है जो कि आपको विश्वास करने से रोकती है? दूसरा प्रश्न, बीमारों की चंगाई में आपकी क्या भूमिका है? आपकी वह भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? तीसरा प्रश्न, इस अध्याय को पढ़ने से पहले चंगाई के लिए जरूरी विश्वास को लेकर आप क्या सोचते थे? विश्वास के लिए यदि आपकी कोई बुनियाद थी तो वह क्या थी? क्या इस अध्याय को पढ़ने के बाद विश्वास को लेकर आपकी जो सोच पहले थी वह बदल गई है? चौथा प्रश्न, क्या आप खुद अपने विश्वास के द्वारा चंगाई की पहल करने में खुद को ज़्यादा सहज पाते हैं या फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं? क्यों? इन दोनों ही क्षेत्रों में सुधार के लिए आप स्वयं को किस प्रकार से चुनौती देते हैं? पांचवा प्रश्न, क्या आप पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील और जागरूक मुस्तैद हैं? किस तरह से इस संवेदनशीलता में आप बढ़ सकते हैं जिससे कि पवित्र आत्मा के वरदान हासिल करने की आपकी क्षमता और योग्यता बढ़ सके? छठवां प्रश्न, क्या यह पहली बार है जब मन, भावनाओं और आत्मा से प्रार्थना करने के विचार को आप जान पाए हैं? क्या इससे पहले आप ज्यादा प्रार्थना मन, भावनाओं या आत्मा से करते थे? किन व्यवहारिक तरीकों से आप चंगाई के प्रकाशन में बढ़ सकते हैं? सातवां प्रश्न, इस अध्याय में बताया गया प्रार्थना का नमूना किस प्रकार से आपके द्वारा चंगाई के लिए इस्तेमाल किए गए पुराने तरीके से अलग भिन्न है? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह नमूना आपको और अधिक प्रभावशाली बनाएगा? किस प्रकार?